I want to thank you again for inviting me to share with you.
फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के वचन से आपको बांटने के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिए.
It is a real honor for me to be able to be here.
आपके बीच में रहना मेरे लिए बहुत बड़े आदर की बात है, सम्मान की बात है.
And thank you for your kind hospitality.
और आपके पहुंचाने के लिए भी मैं बहुत ही आभारी हूँ.
The brothers even drive me in the car all the way up to the front here.
भाई लोग जब मुझे कार में लेकर आते हैं तो बिल्कुल ये दरवाजे तक सामने तक लेकर आते हैं.
When I'm at home, I never have such kindness.
मैं अपने घर में जब रहता हूँ तो इस प्रकार की दया की सेवा मुझको नहीं मिलती है.
I drop my wife off right in front of the church and then I have to park far away.
और मैं अपनी पत्नी को चर्च के द्वार पर छोड़ देता हूँ, फिर गाड़ी पार्क करने के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है मुझे.
I want her to come to India and see how people treat me.
मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी आपके बीच में आकर देखे यहाँ पर मेरा कितना आदर सत्कार हो रहा है.
I want to say thank you to the many laborers that are doing so many things here to make this convocation function.
मैं फिर से एक बार सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो दृश्य दृश्य रूप से पवित्र महासभा की सेवकाई को सफल बनाने में कितना ज्यादा वो मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं.
So many different facets need to be done to keep something like this going.
इस पैमाने पे सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग कितने सारे पहलुओं को ध्यान देना पड़ता है और बड़े सरगर्मी के साथ उसको बढ़ाना भी चाहिए.
When I was a teenager, I used to help out at the convocation.
मैं जब किशोर अवस्था में था तो मैं भी पवित्र सभा में मदद करता था.
And I got very little sleep working on many things.
और कई कामों को करने के कारण बड़ी थोड़ी सी नींद मुझको मिलती थी.
So I know that there's many people here sacrificing their time and their sleep to take care of the rest of us.
मैं इस बात को अच्छी रीति से जानता हूँ प्रियो, हमारी देखभाल करने के लिए, हमारी सेवकाई के लिए बहुत सारे लोग कितना कम समय वो सोते हैं और कितना ज्यादा वो मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं.
The scriptures say, though Jesus said, those who serve me, the Father will honor him.
पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा सेवा करेगा वो मेरा पिता उसका आदर करेगा.
May the honor of the Father come upon you for your service.
आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता का आदर आपको मिले.
Jesus said that the greatest ones in heaven will be those who have served.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में बड़े वे होंगे जिन्होंने पृथ्वी पर उसकी सेवा की है.
So when we get to heaven, we're going to see some big mansions, and we know that's your mansions there.
और जब स्वर्ग में जाएंगे तो बड़े-बड़े महल हम देखेंगे, और मैं सोचता हूँ शायद वो महल आपका ही होगा.
Thank you for your labors.
फिर से एक बार आपके परिश्रम के लिए धन्यवाद.
As I have told you, my wife is a Punjabi.
मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मेरी पत्नी पंजाबी है.
I have never seen so many Punjabi women in one place.
एक स्थान में इतने सारे पंजाबी स्त्रियों को पहले कभी नहीं देखा मैंने.
My wife has taught me some Urdu and some Punjabi.
मेरी पत्नी ने मुझको थोड़े से उर्दू शब्द और थोड़े पंजाबी के शब्द भी सिखाए.
नाबाद ने आपको कोई उर्दू पढ़ाना, कोई पंजाबी पढ़ाना.
मैं बहुत ही अच्छे उर्दू बोलता हूं. No translation needed? That's all I know. No, I know some important words. Maine khana khana. Maine chai peena. Maine pani peena. Maine sone laga hoon. I know one special Punjabi word.
Ek visheesh Punjabi shabd main janta hoon.
When I first got married and I first went to work, my wife called me frantically from the house.
Main pehle shuruaat mein jab meri shaadi hui thi aur main office chala gaya tha to meri patni ne urgent call ek ki mujhko.
Actually, she was calling from the neighbor's house. There were no cell phones, so she had to go to another home. She said, "It's in the house." I said, "What's in the house?" She said, "Chua."
Chua.
So I know it's chua. It's Punjabi, right?
Hindi.
That's Hindi? No, that's Punjabi. What I learned also is you never get a Punjabi woman upset.
मैं एक और बात सीखा कि पंजाबी स्त्रियों को आप परेशान नहीं कर सकते.
When she puts her hands on her hips, danger. When she puts her hands on her hips, it's like muka.
और जब मेरे हाथों को कमर में रख दी मतलब आपको एक मुक्का मिलेगा.
And I just say mafi, mafi.
So मैं दोनों हाथ जोड़कर बोलता हूँ माफी.
A Jewish man is no match for an angry Punjabi woman.
एक क्रोधी पंजाबी स्त्री के सामने यहूदी पुरुष भी बिल्कुल चूहा बनकर रहना.
My father-in-law taught me one beautiful chant. I want to say it for you.
मेरे ससुर जी ने मुझको एक बहुत अच्छा जयघोष सिखाया है. मैं भी आपको बताना चाहता हूँ.
मेरे नाम मामगारु नाकु मंची एक बंदी ने नेतिक्षनालो अर्पित चपाल कुटनानी.
बोलो यीशु मसीह का नाम की जय. बोलो यीशु मसीह का नाम की जय. बोलो यीशु मसीह का नाम की जय. Amen. I have a deep burden for my brethren here.
मेरे भाइयों बहनों के लिए आज शाम के समय मेरे मन में बड़ा बोझ है.
And I have a deep burden for lost souls.
खोए हुए आत्माओं के लिए भी मेरे मन में बड़ा बोझ है.
I pray every day, Lord, give me children or I die. That was the proclamation of Rachel in Genesis 30, verse
1.
Give me children or I die.
मुझे संतान दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी.
I pray that the lost are saved.
मैं प्रार्थना करता हूँ कि खोई हुई आत्माएं का उद्धार हो जाए.
I pray for the salvation of the lost.
मैं खोए हुओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ.
Today I will speak specifically to the lost in Christ.
विशेष करके प्रभु यीशु मसीह में जो खो गए हैं उनको मैं निश्चित रूप से बोलना चाहता हूँ.
Remember, our mission as a church is to see the lost saved.
इस बात को आप हमेशा याद रखें प्रियो, कलीसिया की एक बहुत बड़ी सेवा है कि खोए हुओं का उद्धार होना चाहिए.
Salvation is our aim.
प्रियो, उद्धार हमारा निशाना है.
Without the lost getting saved, the church dries up.
यदि खोए हुओं का उद्धार ना हो तो कलीसिया सूख जाएगी.
We must always be working to get the lost saved.
हमेशा इस काम में हमको लगे रहना है कि खोए हुओं का उद्धार हो जाए.
And this comes primarily through prayer.
मूल रूप से प्रियो, ये काम केवल प्रार्थना के द्वारा पूरा कर सकते हैं.
When Brother Bak Singh would come to the United States,
जब भाई बक सिंह यूनाइटेड स्टेट्स में आते थे,
they would have us young college students help him.
वहाँ पर कॉलेज के जवान विद्यार्थी उसकी उनकी मदद करते थे.
One of my friends stayed with him in his room one night.
एक रात मेरे मित्र उनके कमरे में रहे.
My friend was so tired working all day in the convocation.
सारा दिन कॉन्वोकेशन में काम करने के कारण मेरे मित्र थक गए थे.
So then after he got Brother Bak Singh ready for bed,
और भाई बक सिंह को नींद के लिए तैयार करने के
पश्चात
he went to bed himself.
वो स्वयं बिस्तर पर चले
गए.
But he saw Brother Bak Singh on his knees next to the bed.
लेकिन बिस्तर के किनारे में बक सिंह को उसने घुटने पर देखा.
But he was so tired he went to sleep.
इतना थका हुआ था कि वो नींद में चला गया.
He said he woke up an hour later and Brother Bak Singh was still on his knees praying.
एक घंटे के बाद जब वो उठा तो देखा कि भाई बक सिंह अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं.
He said he felt so convicted. This old man is awake praying and he's sleeping.
और इतना ज्यादा वो अपने मन में कायल हो गया. वो जवान बोलता है, बूढ़ा व्यक्ति घुटने में प्रार्थना कर रहा और मैं जवान सो रहा हूँ.
I used to see only one or two people get saved through my ministry per year.
एक साल में मेरी सेवकाई के द्वारा कम से कम एक या दो को ही उद्धार पाते हुए मैंने देखा.
And then I started to pray every day that the lost would get saved.
तब से मैं हर रोज ये प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु जी, खोई हुई आत्माओं का उद्धार हो जाए.
And I heard of one old Scottish preacher.
मैं एक पुराने स्कॉटिश प्रीचर के विषय में सुना था.
He used to rise up in the morning and pray, Lord, will you not just give me Scotland?
और जो सुबह भोर को उठकर वो ये प्रार्थना करता था, प्रभु जी क्या तू मुझे ये स्कॉटलैंड पूरा नहीं देगा?
This man had faith for an entire country.
इस मनुष्य के पास सारे देश को हासिल करने का विश्वास था.
And I became ashamed of myself.
और तब मैं सुनकर अपने आप में लज्जित हुआ.
I have one tiny little ministry and I don't even pray fervently for that. And I started praying every day that the lost would get saved. And I kept an eye out for unbelievers. We open up our home on Sundays for a big lunch and many people come. And I started walking up to them and I say, are you a Christian? If they tell me yes, I say, tell me your story. How did you come to Jesus? And from hearing that story, I could tell whether they really knew Jesus or not. And if they don't know Jesus, I would share with them right there. And if they say they're not a Christian, I share with them about Jesus. And the same story that I told you last night about how I got saved, I tell it to them. And I have all the verses on my iPhone and on my iPad. And I sit them down, I take out my phone, I show them verse by verse. I say, read that verse. I also have a version that puts it English on top, Chinese on the bottom for all the Chinese students. And I can share the gospel in 10 minutes. And I bring them to the point of decision. And if they don't accept, I push them harder. And when they accept, I immediately get them in a Bible study. And there's a little book called Growing in Christ that I give them to work with in a Bible study.
Growing in Christ, मतलब मसीह में बढ़ना।
हमारे क्रिस्ट लोग एरिका आये हम उसको ना देखने के लिए आये इसका बाइबल पढ़ना लेकिन नाम वाले सिंधरवाता और कि ये नाम उसके अंचे वाले का उठाना।
13 short chapters in 13 weeks, we can get them going with the Lord.
भाई वो 13 छोटे-छोटे संदेश हैं और 13 सप्ताह में प्रभु में उनको कैसे बढ़ना हम सिखा सकते हैं।
And I right away grab one of the college students in my class and I pair them up. I say, you're going to do Bible study with this person for 13 weeks. And in that 13 weeks, we can get them excited about Jesus.
जागृत होता है।
And after I share with that person, I right away go asking the next person, are you a Christian?
और जब उस व्यक्ति के साथ मेरा काम हो चुका, मैं दूसरे के पास जाकर पूछता हूँ, क्या तुम मसीह हो?
आप व्यक्ति तो पानी पेंट करवाता, नहीं माला इनको पेंट करने के लिए क्रिस्ट हो रहा है, नहीं मैं डालता हूँ।
Usually I'll share 3 or 4 times over each lunch.
एक भोजन के समय में कम से कम 3-4 लोगों के साथ में बांटता हूँ।
मलाले की का मलाले की का आज मैं भोजन समीप लो, मेरे मुंह ना मुकुल ना लगे तो मैं एक नाड़ी बनाऊँगा उतार।
And I thank God that I see always, I almost always see at least one salvation.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम सप्ताह में एक न एक आत्मा प्रभु के पास आता है।
We must be persistent.
प्रियो हमको इस विषय में सतत प्रयास करना है।
Persistent in prayer.
प्रार्थना में सतत बने रहना।
You start praying for a few months and all of a sudden you will see doors start to open.
थोड़े महीनों के लिए यदि आपने प्रार्थना बंद कर दिया तो आप देखिए आपके द्वार भी बंद हो जाएंगे।
The life of the church comes by bringing in the lost. If the lost are not coming in, the church dries up. We must bring in the lost. If you're a believer, let this be your prayer. And I do this with the highly educated people. It is easier to draw in the poor. The highly educated have all sorts of arguments. But the truth of the Word of God can cut right through that. My regret in life that I had not done this more.
मेरे जीवन का एक दुख 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 ये है कि मैं ये काम और अधिक नहीं कर सका।
Let's look at Luke chapter 15 verse 11.
लूका सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 11 वचन।
लूका सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन सुदाम।
And we're going to read this portion Luke chapter 15 11 through 32.
लूका का 15 अध्याय 11 वचन से लेकर 32 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं।
लूका सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन से 32 वचन वाले को भाग हैं हम चलुकटा।
And he said, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the estate that falls to me. So he divided his wealth between them. And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his estate with loose living. Now when he had spent everything, a severe famine occurred in the country, and he began to be impoverished. So he went and he hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into the fields to feed swine. And he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating. And no one was giving anything to him. But when he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger?
फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में पर जो भाग मेरा वो मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ ना देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
So this man has two sons, and the younger one said to his father, "Give me my inheritance now."
इस मनुष्य के दो पुत्र थे। छुटके ने पिता से कहा, हे पिताजी, मेरा जो संपत्ति का भाग बनता है हिस्सा, वो मुझको दे दे।
Who says to their father, "Give me the inheritance," when the father is still alive?
पिता के जीवित रहते हुए कौन है वो बेटा कह सके कि मेरा भाग मुझको दे दे?
That's what this young man did. He said to his father, "Give me my inheritance."
और ये छुटके भी यही किया, ये जवान ने, उसे कहता कि मेरी संपत्ति का भाग मुझको दे दे।
That's like telling the father, "You can just die now."
दूसरे शब्दों में यदि हम समझने की कोशिश करें, वो कह रहा है, तो मर भी जा तो परवाह नहीं, मेरे भाग मुझको दे दे।
But sometimes this is how we go to God. We say, "Just give me, give me, give me." And this father gave it to him. Be careful what you ask God for. He might give it to you.
आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हो, बड़ा सावधान रहिए, कहीं वो आपको सचमुच में देना दे।
Says, and not many days later, the younger son took everything he had and he went on a journey.
बहुत दिन ना बीते, छुटके ने सब कुछ इकट्ठा किया और दूर यात्रा में निकल गया।
All the work that his father had done accruing this wealth, he just took it and he went off to another place.
सारी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए जितना परिश्रम पिता ने किया, उसको उसने दूर करते हुए अपना भाग उठाया और चला गया।
मैं तो प्रयास पड़े तंत्र संपादित चिना आपने अंतर की कुड़ा मेरी समकुचन वाले अचिन कुमार दो देशांतर पे नाड़े।
And it says that he went to this faraway place and he squandered all that wealth with loose living.
और लिखा है कि वो दूर देश में चला गया और कुकर में अपने सारी संपत्ति को उड़ा दिया।
पर
And it says, when he had spent everything, then a severe famine occurred in that country. After he spent everything, then the severe famine hit. You squander the blessings of life and then the severe famine hits.
जीवन की आशीषों को इस रीति से उड़ा देते हो, उसके बाद जरूर आपके जीवन में अकाल आएगा।
And it says he became impoverished.
उसके बाद देखा वो कंगाल हो गया।
I've seen many people go from a good home.
मैंने देखा कई लोगों को अच्छे परिवार से निकले थे।
And through loose living, they've lost everything.
कुकर में जीने के कारण उन्होंने सब कुछ खो दिया।
They never knew what it was to sleep in a dirty place when they were in their home.
जब वो अपने घर में थे प्रियो, गंदगी में सोना क्या है वो जानते तक नहीं थे।
Now they're sleeping in dirty places.
अब वो गंदगी में मतलब गंदे स्थानों में सोते
हैं।
It is so easy to squander away life.
प्रियो जीवन को इस रीति से व्यर्थ में उड़ा देना कितना आसान है।
So he in verse 15, so he went and he hired himself out to one of the citizens of that country.
15 वचन में लिखा है तो देश के निवासियों में से एक के यहाँ वो जा पड़ा।
So before he was the son of the landowner, he could do many things. Now he's working as a hired slave.
शुरुआत में देखते हैं जमींदार का बेटा है, लेकिन अब वो दूसरे का गुलाम बन गया है।
And he was sent into the fields to feed the pigs.
और वो व्यक्ति उसको सुअर चराने के लिए अपने खेत में भेज दिया।
And this is the most disgusting thing to a Jewish person that you have to go and feed pigs.
एक यहूदी के लिए बहुत ही घृणित बात है कि वो सुअरों के बीच में कुछ काम करने जाए।
It says he became so hungry, he wished he could eat the food that the pigs were eating.
इतना भूखा हो गया कि सुअरों की फली खाने को भी वो तैयार हो गया।
But this man for whom he worked wouldn't let him eat the pig's food. That food belongs to the pigs.
ये जो मालिक ने गुलाम बनाया था लेकिन उसको सुअर की फली भी खाने को नहीं देता, वो कहता ये फलिया मेरे सुअरों का भोजन है।
The world is a very hard taskmaster.
वास्तव में देखा जाए तो ये जो दुनिया है बहुत ही कठोरता से हमसे व्यवहार करता है।
People want to go from the security of God into the world, you'll see what will happen.
देख लीजिए प्रियो, परमेश्वर की सुरक्षा को छोड़कर दुनिया की मौज मस्ती में भी जाना चाहो तो आपकी हालत क्या होगी।
The world is a very hard taskmaster.
ये संसार जो है बहुत ही कठोर स्वामी के समान है।
People will leave the kindness and security of God and think that there's something better in the world.
कितनी अजीब बात है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सुरक्षा, उसकी भलाइयों को छोड़कर सोचते दुनिया के वातावरण में स्वतंत्र हो जाएंगे।
But the world will not even let you eat the food for pigs.
जो संसार में सुअरों को भोजन मिलता है वो भी आपको खाने नहीं मिलेगा।
It says in verse 17, but when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread to eat, but I'm dying here with hunger.
17वें वचन में कहता है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
He came to his senses.
अपने आपे में आया।
Sometimes I look at people, how much suffering they go through, and I say, when are you going to come to your senses and come back to God?
कभी-कभी भी लोगों को इतना ज्यादा पीड़ा में, दर्द में और दुख में देखता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ, भैया, कब तू अपने होश में आएगा? कब तू परमेश्वर के पास वापस लौट कर आएगा?
How dirty does your life have to be before you come to your senses?
अपने जीवन को कितना गंदा करना चाहते हो जब आपकी आपकी आंखें खुल जानी चाहिए।
He says, everybody who works for my father has plenty to eat.
और वो कहने लगा, मेरे पिता के मजदूरों को कितना ज्यादा खाने के लिए रोटी मिलता है।
My father is a good father. He feeds his workers.
मेरा पिताजी बहुत ही भला है, अपने मजदूरों को భోజనం ఖిలాతాయ్
నాకంటే ఎంతో మంచివాడు తన కూలివాళ్లకు ఎంతో సమృద్ధిగా అన్నం పెడతాడు.
Let's start reading at verse 18.
అవి 18వ వచనం సే ఆగే పడతాయ్
18వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం.
I will get up and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. So he got up and he came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his slaves, Quickly, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate, for this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found, and they began to celebrate.
18 वचन से 24 वचन तक पढ़ते हैं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे.
నేను పరలోకమునకు విరోధంగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసుకుని ఇక మీదట నీ కుమారుని అనేకించుకుంటకు యోగ్యుడను కాను, నన్ను నీ కూలివాణిలో ఒకనిగా పెట్టుకునమని అతనితో చెప్పుదనుకుని లేచి తండ్రి ఎదుటకు వచ్చెను. దూరంగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణ్ణి చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాని నడి మీద పడి ముందు పెట్టుకున్నాను. అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో, తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధంగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసుకుని ఇక మీదట నీ కుమారుని అనిపించుకుని యోగ్యుని కాదు నేను. అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి దశత్వ వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీరికి కట్టి వీరి చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొలగించి ట్రొక్కిన దూడను తెచ్చి వధించి మనం తిని సంతోషపడదము, ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మళ్ళా బతికెను తప్పిపోయి దొరికినని చెప్పెను. అంతగా వారు సంతోషపడసాగిరి.
He said, I will get up and go to my father. When a person comes to their senses, they get up and they go to the father. How dirty does a life have to become before it comes to its senses? I implore you this day, get up and go to your father. And say, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I'm no longer worthy to be called your son. And let the forgiveness of God shower upon you. And then he said he would say to his father, make me as one of your hired men.
जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो ये भी कहूंगा मुझे अपने मजदूरों में से एक सा रख ले.
But even in his repentance, he's demanding things. Make me like one of your hired men.
देखिए पश्चाताप तो कर रहा है लेकिन पश्चाताप में भी कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है, मुझको एक मजदूर बना ले.
And this is how we are with God.
इस रीति से हम कभी कभी परमेश्वर से व्यवहार करते हैं.
Lord, forgive me for my sin, but fix everything that I broke.
प्रभु जी मेरे पाप के लिए मुझे क्षमा तो कर दे, लेकिन जो कुछ मेरा टूट गया है उसको फिर से बना दे.
And God says, okay, come on in.
परमेश्वर कहता है अपनी दया में ठीक है वैसे ही आ जा.
Even in our repentance we have problems.
कभी कभी प्रियो हमारे मन फिराने में हमारे पश्चाताप में भी समस्या खड़ा करते हैं.
But God in his kindness brings us in anyway.
अपनी अपरंपार दया में प्रभु हमको अपने पास समेट लेता है.
Verse 20 says, so he got up and he came to his father. Get up and come to your father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him.
पिता ने उसको पहचान लिया और उसकी दया उमड़ पड़ी.
The father was standing on the front porch of the house watching month after month, year after year for this son.
घर का जो बरामदा होता है वहां पर खड़ा हुआ पिता नहीं मालूम कितने सालों तक कितने महीनों तक कितने हफ्तों से अपने पुत्र के वापसी का इंतजार कर रहा है.
Jesus is standing and watching for you. And even when you're a long way off, he sees you and has compassion. And it says, and the father ran and embraced him and kissed him.
और लिखा है पिता दौड़ कर गया उसको गले लगाया और उसको चुम्बन दिया.
The father ran.
पिताजी दौड़ा.
God does everything in this.
इसमें परमेश्वर सब कुछ करता है.
You want me to run to you? I run.
यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए दौड़ूं, ठीक है मैं दौड़ूंगा.
It is my joy to run to you. I will embrace you and kiss you. This is very strange for the Middle East. Men in the Middle East don't run.
मध्य पूर्व भाग में ये जो इन देशों में भाग में पुरुष जो है दौड़ते नहीं है.
Not big landowners.
बड़े बड़े जमींदार तो और भी नहीं.
Running is for children.
हाँ ये जो दौड़ना है ये बच्चों का खेल है.
This man puts aside his dignity and runs for his child.
ये जो पिता है अपने सारे सम्मान को जैसे पुराने वस्त्र उतार कर निकाला और दौड़ कर गया उसके पास.
This man says, "No, I will run after my son."
वो कहता है नहीं मैं अपने पुत्र के पीछे दौड़ कर जाऊंगा.
Other people would think, let the son come and fall in the mud and apologize. That's the son who told you, you can just drop dead and give me your money, that's all I care about.
तुम मर भी जा तो परवाह नहीं मुझको, मेरे संपत्ति का एक एक कौड़ी मुझको दे दे.
Before the son ever apologized, he ran to him.
पुत्र ने अपने मुंह से क्षमा की याचना करने से पहले पिता दौड़ कर गया.
Maybe the son was just coming back to get more money.
हो सकता ये पिता ये बेटा जो है वापस कुछ और पैसे मांगने के लिए आ रहा है.
The father didn't know yet. He just saw him from a long way off and he ran to him. You cannot see a face from a far distance. But a father knows the way his sons walk.
लेकिन पिता अपने पुत्र के चाल को जानता है।
I can tell my sons from a far distance just by the way they walk. Just the sight of his son was enough to make the father run and hug him and kiss him. And the son said to him, Father, I've sinned against heaven and in your sight. I'm no longer worthy to be called your son. His father said nothing. It's as if you've come back. That's enough. Remember, the son said that he would say to his father, make me like one of your hired men. The son didn't even have the chance to say it. The father said to the slaves, bring the best robes, put the robe on him, put the ring on his hand, sandals on his feet. He says, quickly, get the best robe, bring the best robe and put it on him. Cover all these wounds that the world has put upon my son. Put a ring on his hand so that people know that's my son. Put sandals on him, on his feet. He is not a slave. Bring a fattened calf. Let's kill it and celebrate. For this son of mine was dead and has come to life again. This son was dead. He was dead. People outside of Jesus Christ are dead. We must realize that those outside of Christ are dead. If we just think, oh well, he's a good fellow, it'll never work. Without Christ, they are dead. When you come to Christ, it says you are alive again. The Bible says he has come to life again. He was lost and has been found. And they began to celebrate. Let's read from verse 25.
आगे 25 से पढ़ते हैं.
Luke 15:25.
लूका 15 उसके 25 से आगे.
Now his older son was in the field, and when he came and approached the house, he heard music and dancing. And he summoned one of the servants, and he began inquiring what were these things. And they said to him, "Your brother has come, and your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound." But he became angry and was not willing to go in. And his father came out, and he began pleading with him. But he answered, and he said to his father, "Look, for so many years I have been serving you, and I have never neglected a command of yours. And yet you have never given me a young goat, so that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your wealth with prostitutes, and you killed a fattened calf for him." And he said to him, "Son, you have always been with me, and all that is mine is yours. But we had to celebrate and rejoice, for this brother of yours was dead, and he has begun to live. He was lost and has been found."
परंतु उसका जेठा पुत्र खेल में था. जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना. अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, "ये क्या हो रहा है?" उसने उससे कहा, "तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पलाव और बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है." यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा. उसने पिता को उत्तर दिया, "देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता. परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने पलाव और बछड़ा कटवाया?" उसने उससे कहा, "पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये भाई, तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है."
అప్పుడు అతని పెద్ద కుమారుడు పొలంలో ఉండెను. వాడు పొలం నుండి వచ్చుచు ఇంటి దగ్గరకు రాగా వాచ్యములను నాట్యములను జరుగుతూ విని దాసుల్లో ఒకరిని పిలిచి, "ఇవి ఏమిటని అడుగుగా ఆ దాసుడు అతనితో, 'నీ తమ్ముడు వచ్చి ఉన్నాడు, అతడు తన ఎదురుకు సురక్షితంగా వచ్చిన నీ తండ్రి క్రౌర్య ద్రోణులను వధించెను, అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళ్ళవలకు పోయేను గనుక అతని తండ్రి వెంపలకు వచ్చి లోపలికి రమ్మని బ్రహ్మరాలుకొన్ను. అని కనుక తన తండ్రితో, 'ఇదిగో ఇది ఏళ్ల నుండి నిన్ను సేవిస్తున్నానే, నీ ఆజ్ఞను నేనెన్నడూ ఇవ్వలేదే, అయినను నా స్నేహితుడితో సంతోషపడినట్లు నీవు నా తండ్రిలో ఒక మేకపిల్లనైనను ఇవ్వలేదు, అయితే నీ ఆస్తులు వేసేలతో తినివేసిన ఈ నీ కుమారుడు రాగానే మీరు కొవ్విన దూడను వదిలిస్తామని చెప్పను.' అందుకట్లు, 'కుమారుడా, నీవు ఎల్లప్పుడూ నాతో కూడా ఉన్నావు, నావన్నీ నీవి, మనం సంతోషపడి ఆనందించిన యుక్తమే ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికిను తప్పిపోయి దొరికినని అతనితో చెప్పాను."
So his brother comes in from the field, he hears this dancing and singing, and he asks the slaves, "What's going on?" They said, "Your brother has come back, and your father has killed a fattened calf for him because he's come back safe and sound." But he became angry and was not willing to go into the house. That is the natural response of human beings toward others. Make that brother of mine wallow in the mud for a few years and work his way back up. But that's not the way the father is. He says, "My son was lost and he's found."
मेरा बेटा खो गया था, मैंने उसको पा लिया।
And now look at the life of this father.
अब देखिए पिता का क्या स्वभाव क्या है।
His father goes out of the house. It says he came out and he began pleading with him.
पिता का स्वभाव देखिए, फिर उसका हृदय देखिए, घर से बाहर निकला, बड़े लड़के के पास जाकर उससे विनती कर रहा
है।
He says, I love you. Please come in, rejoice with us.
पिता कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अंदर आ जा, हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे।
Here is the father, the great landowner, pleading with his son.
यहाँ पर पिता है, बड़ा जमींदार है, अपने बेटे से विनती कर रहा है।
This is the picture of God that He pleads with us. Come, come to me.
परमेश्वर का सुंदर चित्र है प्रियो, जो आपके पास आकर आपसे विनती कर रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
People in the church will say, why should we put so much emphasis on unbelievers? We have to take care of the people in the church. Look, I've been serving in this church all these years and you have all this emphasis on unbelievers who've done nothing for this church.
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, देखो इस कलीसिया में कितने वर्षों से मैं मेहनत और परिश्रम करता रहा और तुम वो हो जो अपना सारा ध्यान सारा खर्च दूसरों के ऊपर करते हो जो कलीसिया के बाहर है।
It says that this son said to the father, look, for so many years I have been serving you. He said to his father, look, for so many years I've been serving you. That word, look.
ये जो अंग्रेजी का शब्द लुक है ना, बड़ा खतरनाक है, मतलब एक प्रकार का विरोधात्मक है। वो कहता है, ध्यान से देख, इतने वर्षों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ।
इंग्लिश में लुक करने वाला है वो चूड़ हमारे के जो इजवान हैं ना, तो विरोध का मतलब बेटे का चक्कर माता मैं इन्हीं संस्कार का नहीं सेवा करता ना अंचे फ्रेंड।
A son doesn't say this to a father.
साधारण तौर पर एक बेटा अपने पिता को लुक कैसे बोल नहीं सकता है।
हाँ, साधारण कुमार
A father can say to a son, look, look, look.
पिता कह सकता, देख, देख, look, ऐसा बोल सकता पिताजी।
तंद्री चुडो, देखो, अनि चपलेगा, ये कुमार लोग तंद्री नहीं आनकोडो।
This son said to his father, look.
लेकिन बेटा कहता, देख।
For so many years I've been serving you and I have never neglected a command of yours.
इतने वर्षों से मैं तेरी सेवा करता रहा, एक भी आज्ञा को मैंने नहीं टाला।
He said, I've never neglected a command of yours.
एक भी आज्ञा को मैंने नहीं टाला।
He is neglecting his father's command to come in the house.
लेकिन अब देखिए, पिताजी भीतर बुला रहा है लेकिन उसके आगे को नहीं मान रहा है।
He says, I've never neglected a command at the same instant that he's disobeying a command.
वो कह तो रहा है कि मैंने तेरी आज्ञाओं में से एक को भी नहीं टाला, बोलते बोलते उसके आज्ञा को टाल दिया।
We are such hypocrites.
इतने बड़े ढोंगी और कपी
हमें।
We think we obey God all the time.
हम ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं।
And God says, okay, my son, come on in.
और परमेश्वर कहते हैं, ठीक है बेटा, तूने क्या, अब अंदर आ जा।
He says, I never neglected a command of yours, and yet you've never given me a young goat.
मैंने एक भी आज्ञा को नहीं टाला, तो अभी तुमने उसको एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया
नहीं आगे नहीं नहीं मेरे तो आई ना ना के पुरु पुड़ा वो का मैं के लिए पुड़ा ही लेता हूँ ना
You've never given me a young goat so that I could celebrate with my friends.
एक भी बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं
ना सम ना ना स्नेहितों को संतोष पाने के लिए ना के लिए का मैं के लिए नहीं नहीं ले रहा हूँ
Everything is about me.
सब कुछ मेरे बारे में
I want a young goat so that I can celebrate with my friends.
मेरे दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए मुझको एक बकरी का बच्चा चाहिए.
ना स्नेहितो संतोषपटानी ना केंद्रो कुडा ఒక్క మేకని నీలే అంటున్నాడు.
But for this other son of yours who squandered everything, you've killed a fattened calf.
ये लड़का जिसने सब कुछ ऐसी उड़ा दिया, उसके तूने उसके लिए तूने पलावा बछड़ा काट दिया.
For him you gave a fattened calf which is big you didn't even give me a young goat
uske liye tumne itna mota bachcha ek bail diya aur mere liye itna chota bakri ka bhi bachcha nahi diya
ha chinna kumari kehte peta kovina dodan ichinao aithe naaku oka chinna maakalam kodi ivar antunadu
and he said to him son you've always been with me and all that is mine is yours
peta tu hamesha mere saath hai जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा
है
All that is mine is yours.
जो कुछ मेरा है वो तेरा
है
When we are in the church, in the body of Christ, everything that Jesus has is ours.
जब कलीसिया के हम भाग हैं प्रियो मसीह के देह के एक अंग बन गए हैं तो जो कुछ मसीह का है सब कुछ हमारा है
మనం సంఘములో ఉన్నప్పుడు అనగా సంఘాలలో అవయవంగా ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు ప్రవాది ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా మనకి చెందినవే
But sometimes we walk in poverty because we never extract the truth that's in his word
లేకిన్ కభీ-కభీ ప్రయోగ కంగాలీ మే జీవన్ బితాతే హై క్యోంకి మసీహ్ కి దేహ్ కి జో భర్పూరి హై ఉస్మే సమ్ నికాల్ నహీ సక్ రహే
And even when we're in the church, we live in poverty.
कलीसिया में रहते हुए भी हम कंगाली का जीवन बिताते हैं
He say, I have so much truth for you if you would only come and get it from the word of God.
वो कहता है कि मैं तेरे लिए इतनी बड़ी सच्चाई को इतना ज्यादा भरपूर सच्चाई को बनाए रखा हूँ यदि केवल तो मेरे पास आ जाए
If you get filled with the word of God, you will not worry about the attention that the unbeliever is going to get coming in.
परमेश्वर के वचन से यदि मेरा हृदय भर दिया जाए, तो अविश्वासियों को जो सेवा दी जाती है, अविश्वासियों के लिए जो प्रेम दिखाया जाता है, उसके विषय में मैं बिल्कुल ठोकर नहीं खाऊंगा।
The father says, "We had to celebrate and rejoice."
पिता कहता है, अवश्य हमें मनाना है और खुशी मनाना है।
Because this brother of yours was dead and now he's alive.
क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था अब वो जीवित है।
We must work to draw in the unbelievers.
प्रियो अविश्वासियों को कलीसिया के भीतर लाने के लिए मेहनत करना है।
मैं अविश्वासियों के संघ में लोग क्रिस्ट को दावत
And this comes primarily through prayer.
और ये मूल रूप से इस काम को हम प्रार्थना के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं।
ये कार्य हमें केवल प्रार्थना द्वारा मात्र में हम संपर्क
You pray every day, bring in the lost.
हर एक रो, हर एक दिन प्रियो, खोई हुई आत्माओं को प्रभु के घर में लाने के लिए प्रार्थना करें।
हमारी प्रति दिन हो पूरा, तब हमारी आत्मा लो, संगमलो के रावल वचन के लोग प्रार्थना चाहिए।
Give me children or I die.
मुझको संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
And then learn to enjoy everything that he has for you as a believer.
एक विश्वासी होने के नाते पिता ने आपके लिए घर में जो समृद्धि रखा है उसका सुखानुभव करना आपको सीखना है।
और कुमार ने कहा देव के द्वारा संगमलोक से समृद्धि अनुभविचानी यूं नेचुरली।
Let's look at Luke chapter 14.
लूका का 14 अध्याय।
लूका के बाद 14 अध्याय।
We're going to read verse 23.
उसका 23 वचन पढ़ते हैं।
Luke 14:23. And the master said to the slave, "Go out into the highways and along the hedges, and compel them to come in, so that my house may be filled."
स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ला ताकि मेरा घर भर जाए।
A man was holding a big dinner feast and he was trying to draw in a lot of guests.
एक व्यक्ति ने बड़े भोज को तैयार किया और बहुत सारे नेवताधारी को इकट्ठा करने की कोशिश किया।
And there was more room.
लेकिन अभी भी जगह बाकी है।
He says, bring in more. He said, don't ask them to come in, compel them to come in. That means you grab it, come on, pull them in. Sharing the gospel is not a passive thing, it's active. You push them. What is your sin? Confess your sin. You may say, oh, the gospel's not like that. You share it, and if they accept, fine. If they don't accept, fine.
सुसमाचार बोल देता हूँ मान लिया तो ठीक है नहीं मान तो वो भी ठीक है
If you go to somebody's home and you see the back of the house is on fire, then you go knock on the door.
प्रियो मान लीजिए आपने किसी घर में गए और घर का पिछवाड़ा आग लगा हुआ है और जाकर आप दरवाजा खटखटाते हो
And so the man opens the door and you start to talk to him. Oh, I think it would be very, very good if you would just please consider that your house might be in a little bit of trouble. You know, I really don't want to trouble you. I know you're watching a cricket game, but I just was a little bit concerned about you, you know.
देखो भैया मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता हूँ आईपीएल का मैच देख रहे हो तुम लेकिन कुछ बात बोलना चाहता हूँ
No, you will say your house is on fire. Get out.
दरवाजा खोला क्यों नहीं बोलता भैया देख ले तेरी आग लगी है पीछे में
And he says, oh, come on, it's not that bad. So you're just going to walk away and say, okay, well, suit yourself. No, you grab him, pull him out. And you go and you grab the wife by the sari and the children, you pull them out. And if they're Punjabis, you grab the woman by the shalwar kameez, you pull them out. The gospel is active. I will start with an invitation to come to the Lord.
निमंत्रण से मैं शुरू करता हूँ।
Ezekiel 18 verse
32.
For I have no pleasure in the death of anyone who dies, declares the Lord. Therefore repent and live. God takes no pleasure when anybody dies. So he says to you tonight, repent and live. Isaiah 1:18. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are as scarlet, they will be made white as snow. Though they are red like crimson, they will be like wool.
यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे।
Come now, let us reason together. This is the message of the gospel. Come. God will start there. He'll say, come now, let us reason together. You have wickedness in your sin. Come to me, I'll make it white as snow. He doesn't ask for any payment. He says, just come, I'll clean you. He starts with gentle reasoning.
बड़े कोमल मृदु भाषा में विवाद करना शुरू किया।
Revelation 22 verse 17.
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 वचन।
The spirit of the bride say, come, and let one who hears me say, come, and let one who is thirsty, come, let the one who wishes to take water of life without cost.
आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, सुनने वाला भी कहे, आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे, वह जीवन का जल सेंत में दे।
This is the message of the gospel. Come.
सुसमाचार का संदेश है प्रियो, आओ।
सुवार्ता वर्तमान इधर के द्वारा रंगे रमो।
He says, is anyone thirsty? Come.
यदि कोई प्यासा है, आओ।
Come and take the water of life without cost. This is here where he starts with the gospel. He reasons with us. And then he appeals to the sinner. So now I appeal tonight to the person who seeks pleasure. You say living in the world gives you pleasure. You have great pleasure doing these things in the world.
मौज करना कितना सुख होता है और ये सारी बातों को करने से कितना अच्छा सुख का अनुभव होता है।
So I ask you, is there real pleasure in that the next morning? How do you feel?
मैं आपसे पूछता हूँ, आज सुख विलास के अनुभव को करने के पश्चात कल सुबह आपको कैसे लगता है
Is there any lasting delight in that?
क्या उसमें स्थिर रहने वाले कोई सुख आपके लिए है
When you see the pain that it causes people in the end, and I appeal to the one who is self-righteous, thinking that they have everything together like that second son. I ask you, have you found rest for your soul? Isaiah 55 verse 2. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and delight yourself in abundance.
जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो मेरी ओर मन लगाकर सुनो तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे
Why do you waste so much of your life on these things? Come to me and get abundance. He says, what is it? I ask you, what is it that keeps you from Jesus? What is it that keeps you from Him? Some men, some women will feel themselves too guilty, too wicked.
जो अपने आप में इतना ज्यादा दोषी अपने आप को पाते
हैं
You may feel yourself the most wicked person on earth.
शायद आप पृथ्वी अपने मन में सोचते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा दुष्ट मैं हूँ
But you cannot win that award for the most wicked because that was a man named Paul. He was the chief of sinners.
प्रियो वो जो टाइटल है आपको नहीं मिल सकता क्योंकि पौलुस ने पापियों को प्रधान करके पहले से उसने उस बाजी को मार दिया
God took the chief of sinners, washed him, cleansed him, and took him to heaven.
पापियों के प्रधान को प्रभु यीशु से अपने हाथों में लिया धोया और उसको शुद्ध किया और अपना बना लिया
And so even if you are wicked, does not the sick one need a hospital?
प्रियो मान लीजिए यदि आप दुष्ट हैं भी कितना भी रोगी हो क्या उसको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है
वास्तविक दुष्ट है ఒకవేళ రోగి అయితే ఒక రోగికి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదా
Isn't the poorest one in need of the most charity? So if you are wicked, come to him. Your sin will not surprise him. Some people think I cannot come until my life is better. Will your life ever get better without Jesus? No, you will only grow worse. Come. Come without delay. Isaiah 64 verse 6. For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment, and all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind take us away.
हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है।
You may say, well, I feel like I can't really believe.
आप सोचते होंगे मुझको लगता है कि मैं वास्तव में ऐसा विश्वास नहीं कर सकता।
You'll never believe if you focus on your believing. I'm inviting you to a man named Jesus. The gospel is very simple. I am inviting you to Jesus.
सुसमाचार बहुत ही साधारण और सरल प्रियो मैं आपको केवल यीशु मसीह के पास आने के लिए निमंत्रण दे
रहा हूँ Come, he has power to save.
प्रियो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आपको बचाने की सामर्थ है
Some people will argue, well, this is not a convenient time for me in my life. But when will that time come? Will it come when you are in hell? Or will it come when you're in your deathbed and death has choked your throat so you can't speak? Second Corinthians chapter 6 verse 2. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation.
क्योंकि वो तो कहता है, अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है।
इधरो इपड़े निक्के लिए अनुकरण है समयो, इधरो इधे रक्षण देनो।
Now is the acceptable time. Now is the day of salvation.
अभी प्रियो आपको अंगीकार करने का समय है, उद्धार का समय अभी है।
Do not wait any longer. You have no invitation for next week. The invitation from Jesus is now. Hebrews 3, verse 7 and 8.
Hebrani ki patri, 3rd adhyay, 7 aur 8 vachan.
Therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as when they provoked me, as in the day of trial in the wilderness.
Atah, jaise pavitra atma kehta hai, yadi aaj tum uska shabd suno, to apne man ko kathor na karo, jaisa ki krodh dilane ke samay, और परीक्षा के दिन जंगल में किया था
Today, if you hear his voice, come to him.
आज यदि आप उसकी आवाज सुनते हैं आइए उसके पास
Do not harden your heart.
अपने हृदयों को कठोर न करें
It is you who hardens your heart if you don't come.
Do
Do not harden your heart. Just come. This might be your last chance. In Hosea 4:17, God might say, as he said in Hosea 4:17, he's given unto idols, let them alone. Don't wait for that day. Don't wait for that day when God says he's given unto idols, let him alone. You may say, well, I've already rejected the Lord so many times already. My master has sent me here to India to appeal to you and say, come. May you beat your breast and say, Lord, forgive me because I am a sinner. I compel you to come in. Your house is on fire. Flee from that inferno. Do you realize what you are rejecting? Flee from your sin now. Believe on the Lord Jesus Christ. Deathbeds are very hard things. Deathbeds are very difficult things. Hebrews 10:31. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. First John 3:23. This is his commandment, that we believe in the name of his Son, Jesus Christ. This is his commandment. It is a command. He's no longer inviting you. He's commanding you. Believe on the Lord Jesus. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Believe on the Lord Jesus. It is a command, not a suggestion. As an ambassador for Jesus, I command you to come to him. Do you still refuse the gospel? Sinner, believe. He does not command you to feel anything, just believe.
प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको हुक्म दे रहा है, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट विश्वास कर लीजिए।
जस्ट डू व्हाट गॉड कमेंड्स यू टू डू,
जो वो आज्ञा देता है उसको कर दीजिए।
Will you spurn his command?
क्या उसके आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत करोगे?
Obey the command.
उसकी आज्ञा को मान लो।
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household.
प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा।
Sinful man always wants to delay things.
ये जो पापी मनुष्य है, स्वभाव ही उसका ऐसा है कि हमेशा वो स्थगित करना चाहता है।
I say, hurry and come to him.
मैं कहता हूँ जल्दी करो, आओ उसके पास।
Psalm 119 verse 60. I hastened and did not delay to keep your commandments.
मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, मैंने पूर्ति की है।
मैं आज्ञाओं को अनुसरण करने में जागरूक का पर्व नहीं।
Some people say I need more time to pray about getting saved.
कुछ लोग बोलते हैं इस विषय में, उद्धार पाने के विषय में मैं थोड़ा और समय चाहता हूँ।
Now is the time.
अभी समय है।
Do not delay.
देर न करें।
You don't know if you're going to be alive at the end of this summer.
प्रियो ये ग्रीष्म काल के अंत में या गर्मी के अंत में आप जीवित रहोगे या नहीं, आपको भी नहीं मालूम।
You don't even know if you're going to be alive tomorrow.
प्रियो कल के दिन भी आप जीवित रहोगे या नहीं, आपको नहीं मालूम।
Is your heart really as strong as you think it is?
क्या आपका हृदय इतना मजबूत है जितना आप सोचते
हैं?
Are you going to be able to survive a car accident?
क्यों कार का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं बच जाऊंगा, क्या हिम्मत आपके पास?
कार एक्सीडेंट है कि मैंने बचता नहीं, धैर्य नहीं बनता।
Or a motorcycle accident?
मान लीजिए मोटरसाइकिल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया तो मैं कोई परवाह नहीं, मैं बच
जाऊंगा।
For all we know, the commandment has already been given from Isaiah 38 verse 1. प्रियो
जितना हम बोले हैं सबका सारा सब सुन लीजिए, ये हुक्म जारी हो गया है। यशे नबी की किताब उसका 38 अध्याय और 31 वचन।
Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live.
यशे नबी की किताब 38 अध्याय और उसका पहला वचन। यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी वो दे दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा।
Maybe the command has already been given for you. You shall die and not live. Come now to Jesus. Don't let this night slip by. Imagine I am standing next to your coffin.
कल्पना करिए यदि मैं आपके उस कफन पेटी के बाजू में खड़ा हूँ।
And I am saying, this man rejected Christ and did not receive the free gift of salvation.
और मान लीजिए दूसरों को यदि मैं बोलता रहूंगा आपके शव पेटी के बाजू में खड़े होकर, ये वो व्यक्ति है जिसने सुसमाचार को सुना लेकिन उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, इनकार किया।
Some here are already condemned to hell.
ध्यान से सुनिएगा, बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप में से यहाँ बैठे कुछ लोग पहले से ही नरक के लिए दंड दिए गए हैं।
Mm-hmm.
How do I know that? John chapter 3 verse 18. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।
योहान सुवार्ता 3 अध्याय 18 वचन में आई ने विश्वास मुझमाने की तीर्थ तेज बढ़ो विश्वसन पर वाड़ो देवि अद्वितीय कुमार ने नाम मंद विश्वास मुझ लेने गंत वाने की इन तक मुन के तीर्थ तेज बढ़ेनो।
Will you not turn to him now?
क्या इसी समय आप प्रभु के पास मुड़कर नहीं आएंगे?
इपड़े तू प्रभु वाइपु तेरेगला।
Some of you might live another 50 years. I hope this message haunts you. A day is coming when your ear will be too cold to hear the gospel. Many people who have heard me preach this word are now dead.
बहुत सारे लोग इस वचन को प्रचार करते हुए जिन्होंने सुना था पहले आज वो मरे हुए हैं।
अनेक मंदिर एनी मार्क्यानी मरे हुए था बेनवारु इपड़े के चंपे नाइ।
They are in hell now.
इस समय वो नरक में हैं।
इस समय लोग आते हैं तुम लोग आते हैं।
They're in a place where there is no more gospel being preached to them.
वो ऐसे जगह में पहुंच गए थे जहां पर अब उनके लिए कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है।
And Jesus described what that place is like in Mark
9:44.
It says, where their worm does not die and their fire is not quenched.
और जहां की आग घुसती नहीं
है।
बाइबल सेज वेयर देयर वर्म डज नॉट डाई एंड द फायर इज नॉट क्वेंच्ड।
बाइबल कहती है उनका कीड़ा वहां पर मरेगा नहीं और वहां की आग कभी बुझेगी नहीं।
God has specific worms to torment people in hell. It says their worm does not die.
और प्रियो प्रभु ने कुछ लोगों के लिए ऐसा निश्चित कीड़े तैयार किए कि उनका कीड़ा उनको जिंदगी भर वो तो हमेशा के लिए अनंत काल के लिए सताता रहेगा और वो कीड़ा मरेगा नहीं।
ఐతే నరకంలో వారిని వేధించినందుకై మరి ప్రభు ఒక పురుగును చీల్చినాడు, మరి ఆ రీతిగా వారు అగ్ని ఆనదు ఆ పురుగు వారిని వేధించిన పురుగు కూడా చావదు.
That is the way Jesus described hell.
ఇస్ రీతి సే ప్రభు యేసు మసీహ నరక కి వ్యాఖ్య ది హై.
ఆ రీతిగా ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు నరకాన్ని గురించి వివరించినారు.
It is a real place where real people go.
వో వాస్తవ మే ఏక్ జగహ హై జహాన్ పర్ వాస్తవిక్ లోగ్ పహుంచేంగే. काल्पनिक नहीं है।
हाँ, यदि अलाइज साबित है ये तो उपात्मों में क्या है इतना दिलानी वास्तवंगा जनरल वेलोर से वास्तव में स्थावरी।
Matthew 7 verse 13।
मत्ती सुसमाचार 7:30 वचन।
मत्ती सुमाता ये लोग जाएं वो बुकाई वचन।
For the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it.
मत्ती सुसमाचार 7:30 और उसके 30 वचन में पढ़ते हैं। सफेद फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो माल जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे।
If you do not come to him, this is the verse for you. This is the verse for people who will not believe.
यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते हो, ये वचन आपके लिए है।
जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते उनके लिए यह वचन है।
Proverbs chapter 1 verse 24 through 33.
नीति वचन का पहला अध्याय उसके 24 से 33 वचन तक।
Because I called to you and you refused, I stretched out my hand and no one paid attention, and you neglected all my counsel and did not want my reproof. I will also laugh at your calamity. I will mock when your dread comes. When your dread comes like a storm and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would not accept my counsel. They spurned all my reproof. So they shall eat the fruit of their own way and be satiated with their own devices. For from the waywardness of the naive will kill them, and complacency of fools will destroy them. But he who listens to me shall live securely and will be at ease from the dread of evil.
मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति वर के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और स्थिति में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगा। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगा, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से भय किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति को न चाही, वरन मेरी सब प्रार्थनाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से हरा जाएंगे, क्योंकि बुरे लोग का भटक जाना उनके घात किए जाने के कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा।
And God also describes for you what your new location is going to look like and what will happen when you go to hell if you deny Him.
यदि आप प्रभु यीशु मसीह का इंकार करते हैं तो जो अंतिम गंतव्य स्थान आपका है जब वहां पर पहुंचोगे उस स्थान को भी प्रभु यीशु परमेश्वर ने समझा कर रखा है।
ओके प्रभु यीशु क्रिस्त वाणी का जो अंगीकरिंचकुंडा जो तिरस्करించినట్లయితే మీ అంతిమ స్థలము అనేది అంగా నరకం ఏ విధంగా ఉంటుందో అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటాయో ప్రభు ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నాడు।
This is what people are going to say to you when they welcome you into hell.
ప్రియో జబ్ లోగ్ నరక మే ఆప్కా స్వాగత్ కరేంగే लोग ये बात कहेंगे।
Isaiah 14 verse 9.
यशया 14 और उसका 9।
Sheol from beneath is excited over you to meet you when you come. It arouses for you the spirits of the dead, all the leaders of the earth. It raises all the kings of the nations from their thrones. They will respond and say to you, even you have been made weak as we. You have become like us, your pomp and your music of your harps. You have been brought down to Sheol. Maggots will spread out as your bed beneath you, and worms are your covering.
पाताल के नीचे अधलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है।
और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव, तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरे बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है।
They will say, come, let us show us your bedroom. Let us show you your bedroom. Maggots will spread out as your bed beneath you. And then worms will be your covering. Every word of God is true. What he says will come to pass. I urge you this day to be saved. Romans 10:9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तेरा उद्धार होगा।
Isaiah 43:25. I am the one who wipes out your transgressions for my own sake, and I will remember your sins no more. Come to the hands of this man who says, come and let me wipe out your sins, I will remember them no more.
मैं तेरे पापों को मिटा दूंगा, मैं तेरे पापों को कदापि स्मरण न करूंगा। आइए उसके पास, उस मनुष्य के पास।
ये व्यक्ति थे नाचताम साल नहीं ऐसे करोगे ना तुम किस स्थान हो? नहीं पापों में नहीं ना लेकिन आप को जिस समय जब तुम ढाड़ो आप एक ही अपने करेंगे।
I am going to pray now, and as I pray, I want the sinners to pray the prayer with me.
मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और ये मेरी विनती है कि जितने यहाँ पर पापी बैठे हुए हैं आप मेरे साथ यही प्रार्थना को दोहराते जाएं।
Because if you do not get saved tonight, I know what your bed looks like that's awaiting you.
यदि आज रात आपका उद्धार नहीं हुआ प्रियो, तो आने वाले कल के लिए आपका बिछौना कैसे होगा? आज आपको मैं देख सकता हूँ।
It will be a bed of maggots and a blanket of worms.
ये जो कीड़े हैं वो आपके लिए बिछौना तैयार करेंगे और जो केचुए हैं आपको चादर के समान ओढ़ देंगे।
Let's pray. I want the sinners to pray this prayer with me. Lord, forgive me because I am a sinner. Forgive me for rejecting your word.
मुझे क्षमा कर क्योंकि मैंने तेरे वचन को इनकार किया।
ये वाक्य हम तेरे स्त्री चिंतन करती नहीं क्षमित हो।
Forgive me for not believing in your son.
आपके पुत्र पर विश्वास न करने के लिए मुझे क्षमा करें.
ठीक कुमार ने विश्वास मंचन दान करती अलग शेरी से वो.
I proclaim this day that I believe in Jesus.
आज मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ.
एक बार यीशु मसीह पर विश्वास मंचन नाना नहीं किया मैं तेरे पर सोचना नो.
And that I believe Jesus has risen from the dead.
और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मरे हों में से जी उठे हैं.
Father, forgive me for sinning against you and against heaven. And come into my life by the power of the Holy Spirit. Fill me with the Holy Spirit of God. Thank you, Father, for your forgiveness. And Lord, I pray for these fine believers here tonight. Father, draw them close to you. And Father, for all those who have prayed this prayer tonight, that they would let their confession of faith be known. So that they could get involved in Bible study. And be built up in the knowledge and the faith of Jesus Christ. And Father, I thank you for the precious saints here in this room. Lord, I pray that you would be refreshing their spirit. Give them good rest tonight. And draw them close to Jesus. Father, we thank you for your mercies. And we thank you for our Lord Jesus Christ. Because he is King of Kings and Lord of Lords. He has conquered sin and he has conquered death. And he lives forever. We offer all this up to you in the name of Jesus. Amen.